बना देती हूँ और बैंगन के साथ में गया खेत में काफी बैगन के पेड़ थे और एक एक पेड़ में दस दस बीस बीस कोई छोटा कोई बड़ा कोई कुछ खेत बात गए एक जरा अधिक ले आना चार पांच ले आए तो वो गए जाने तो लेकर के एक आया कहा बेटा एक ही मिला तो एक ही था एक ही था अरे मैं कल गया तो देखा जिसमें हजारों बैंगन फैले हुए हैं तो मैया हमने तो देखा एक ही किसने एक को ले आया अरे सब तो आदमी चोर ले गए क्या वो जरा डर गए कोई सो ले गए सब क्या तो चलो तो बेटा देखा ये बैंगन सब लगे में एक एक बैंगन में दस दस बीस बीस पच्चीस पच्चीस अरे जितने बैंगन लगे तू कहता ये एक ही है मैया एक ही तो है कैसे एक है एक 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 बात में दो में अरे बेटा कान पकड़ लिया तुम्हारे गुरु जी ऐसे नहीं है एक बात में दो नहीं सिखलाया बस एक एक तुमने सीखा मूर्ख कहीं का बस कान पकड़ करके एक थप्पड़ दे तो कहते चले गए किंतु एक नहीं छोड़ा बड़े जीती है ना अरे एक ही और अच्छा ये एक तो तुमने लिया और एक मैं ले आई ये कितने हुए तो एक ही हुआ एक ही बात दोनों को मिला करके भी एक हो गया एक और एक एक ही होता है अरे जीव में जब ब्रह्म मिल करके हुआ तो दो होना चाहिए था ना तीन चार पांच छह ऐसे होगा तो तुमको संख्या भी तुम्हारे गुरु जी ने एक नहीं हम लोग जब पढ़ते थे तो एक सौ तक गिनती और उसके बाद में पहाड़ा होता था ना पहाड़ा कम से कम तो चालीस तक का पहाड़ा एकदम मुखस करना और बिट गिर रही है ना क्या होता था और क्या सब गज इत्यादि सब एकदम मुखस और कोई सवाल बड़ा भी करे ना किसकी बजाई और फल और आजकल के एक एम ए बी ए पास जो गणित से है गणित शास्त्र से एम ए किया है पूछे जैसे उनतालीस इंटू नौ कितना होता है भैया जरा कलम ले आना तो कलम ले आना अच्छा दस दस नवा कितना होता है तो दस और नौ वो आजकल निकला है ना क्या तो बात कैलकुलेटर भाग लिया अभी नहीं था जल्दी से मंगाओ अब दस नवा क्या होता है नब्बे होता है उनको याद नहीं है पढ़ा याद नहीं तो तुमको गुरु जी ने पढ़ा भी नहीं पढ़ाया जोड़ भी नहीं पढ़ाया और कुछ भी नहीं पढ़ाया अरे एक और एक तो कहते एक होता है नहीं दो होता है अरे पांच और तीन क्या होता है पांच और तीन एक एक कहते तुमने कुछ जाना नहीं अरे ये सब कुछ सब कहता है सभी एक ही है केवल दो देख रहे हैं जीव अनंत हैं और तुमको भी तुम अपने को भी देख रहे हो ब्रह्म भी है सब एक है तो इस तरह से जिदी लोग हैं वो मानते नहीं है वो कह दिया तो बस कह दिया हम मानेंगे नहीं जैसा भी हो तो एक और एक एक नहीं होता कोई चीज में कोई चीज मिलने से एक नहीं होता है तो ब्रह्म में जीव मिलकर के एक कैसे हो जाए ये एकदम सूची बात है इसलिए वो तो शंकर जी शंकर से साक्षात अवतार थे भगवान के आदेश से जो मायाबद्ध जीव है जो अपराधी जीव है उनको मोहित करके भक्ति को अलग रख करके सिद्ध रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया नहीं तो भक्ति गड़बड़ हो जाती इसलिए काम को किया इसलिए शंकर जी का दोष नहीं है किंतु उनके चिले चपाटी जो है उनके इस तत्व को समझ न सके लकीर के फकीर बन रहे हैं इसमें वो कहते हैं कि भाई ये बात ठीक नहीं है सियाराम में सब जगह जानी करो प्रणाम जोर की दुकान दासी ने ये तो लिख दिया जे सियाराम में सियाराम में ही सब जगत है ऐसा सोच करके मैं सबको प्रणाम करता हूँ ये तो खास तुम तो जैसे सियाराम का जो रूप है वो भी सियाराम 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 सब सियाराम किसी ने पूछा जे भाई तुम जो है तुम सिया है कि राम है दोनों में कौन है या तो सिया है ना राम है तुम कौन सा है सबसे अति चकरा गई अरे यदि कहते हैं सिया तो सब दुर्गा यदि केवल राम कहते हैं तो सिया राम में लिखा है तो तुम बतलाओ ये तुम सिया राम में से सिया है तुम कौन और राम कौन है दोनों में से घंटा घर में पड़ गए उत्तर। सब ही राम है जब कागू सुंदी जी और जटायु जी और उसमें मुक्ति मिली थी सती सिंह जी को, या श्रीमद भागवत में अगासुर बकासुर को मुक्ति मिली, तो यही लोग नहीं भगवान राम और कृष्ण बन सके, कोई भी नहीं। इसलिए यह बात क्या राममय का अर्थ या कृष्णमय का अर्थ क्या होना चाहिए ये समझिए। यदि आज तक तो कोई भी उदाहरण हो जो कोई भी सीता या राम बन गया हो तो देखा जाएगा, कोई ऐसा रामायण में पुराण में शास्त्र में उपनिषद में ऐसी बात, तो सियाराममय का अर्थ क्या होगा। एक होता है सियाराम हो जाते यदि तुलसीदास लिखते तो ठीक था, किंतु उन्होंने लिखा सियाराममय सब जग जानी। सियाराममय माने क्या, जैसे एक व्यक्ति थे महाप्रभु जी के भक्त थे, उनका नाम था मुरारी। एक दिन वो हुसैन साहब आका के यहाँ गए, उनको पेट में कुछ दर्द था, तो उनको वैद्य जी को बुलाया, मुरारी जी बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे, तो गए ऊपर में महल पर चढ़ करके। इतने में उन्होंने देखा एक मोर पंख वहां पर पड़ा है, और मोर पंख देखते ही हाँ ये मोर पंख ये कृष्ण यही अपने पर धारण करते हैं, और कृष्ण की लीलाएं ब्रज का भाव सब भाव से विभावित हो गए और झट मुक्त होकर के इसको कहता है कृष्णमय। कृष्ण की जहां पर स्मृति होते 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 उसमें तन्मय हो जाए और लीला की स्फूर्ति होने लगे और हृदय में राधा कृष्ण का भी दर्शन होने लगे, तो इसको कहते हैं सियाराममय। ये जगत कहां से हुआ, सीता और राम से, अंत में कहां जाएगा, वहीं तक जाएगा, जो कुछ भी है वहीं से, सब जगह सियाराम या कृष्ण राधा की सब जगह वो स्रोत है। पर्वत देखते हैं तो गोवर्धन, समुद्र देखते हैं तो नदी, या देखते हैं तो जमुना जी, वन देखते हैं तो वृंदावन का भान होता है, इसको कहते हैं सियाराम। उनकी स्मृति हो जाए कैसे, एक मां थी उसका एक बच्चा है, बच्चा मर गया, मरने के बाद में बड़ी ये हो गई, फिर हमें काकर हो गई, बच्चे का एक छोटा सा कमीज था और वो छोटे बच्चों को ये पत्थर के खिलौने उसके लिए पिताजी ने खरीद किया था, वो सब रखा है घाट से, वो सब लोग आगे उसका संस्कार। और माँ जब तक देखती है उस कमीज को उसके चीजों को तो क्या करती है, सब सब करके रोने लगती है। उस समय में और उसको कोई चीज का भान नहीं होता है, वो पुत्रमय हो गई, कामनी जो काम व्यक्ति वो कामनीमय हो जाता है, चोर अपने समान सबको चोर समझता है। उसी प्रकार से जो लोग भक्त होते हैं उत्तम भक्त विशेष करके होते हैं, सब जगत को सियाराम से ओतप्रोत देखते हैं, जैसे जलमय। अभी बाढ़ आई थी कुछ दिन पहले, सब मथुरा जलमय हो गया और घर में बाढ़ से सब कुछ बंद हो गया, दिखाई नहीं, जल ही जल दिखाई पड़े, तो जलमय हो गया, तो क्या वहाँ के पेड़ पौधे सब पानी बन गए, मिट्टी भी नहीं रही, आदमी भी नहीं रहे, घर बार भी कुछ नहीं, गाय बछड़े कुछ नहीं, सब पानी बन गया, नहीं पानी मैं मैंने पानी की आवश्यकता हो गई। उसी समय से उसी तरह से जो भक्तों की दृष्टि में सियाराम के ही सब दास दासी ये सब है, उन्हीं से ही जन्म दिए हैं, ऐसा भाव जिसको हो जाता है उसको कहते हैं सियाराम। यदि ऐसा नहीं तो सबको प्रणाम करता है तो अपने को क्या देखेगा, अपने को भी सीताराम कर देखता है तो अपने को प्रणाम कर, दूसरे को प्रणाम करने की जरूरत क्या। एक ने कहा एक घर में कटहल आया, कटहल जानते हैं पका हुआ कटहल, बड़ा स्वादिष्ट होता है, इधर के लोग तो खाते हैं कि नहीं, कटहल होता है कोए उसमें होते हैं, बड़ा रसाल होता है, उसको पनस भी कहते हैं। तो कटहल घर में आया तो किसी ने कहा दिया भैया किसी को आधा दे दो दांत और आधे में तुम लोग खाओ, भक्तों को देना चाहिए, पहले भगवान को और भक्त को समर्पण करके तब तुम लोग खाओ। तो उसने क्या कहा, एक भक्त आमी वैष्णव, मैं तो वैष्णव हूँ और तुम वैष्णव, अपनी स्त्री को करे तुम वैष्णव और हरे वैष्णव, हरे वैष्णव मैंने उनका लड़का वैष्णव, अरे तीन छड़ा कसल कोई खाएगा, मैंने हम ही लोग तो वैष्णव है, अब दूसरा को क्यों देने की क्या जरूरत है? वैष्णव और भगवान को, एक वैष्णव मैं, एक वैष्णव ये तुम है और एक वैष्णव हमारा लड़का है, तो फिर अब दूसरे वैष्णव के यहाँ पर ठाकुर गौड़ी मठ में देने की क्या जरूरत है ना? हम तीन मिल करके खा लेंगे बस, काम हो जाएगा। तो वैसे ही यदि मैं ब्रह्म हूँ और मैं ही सबको, फिर दूसरों को प्रणाम करने की क्या जरूरत? मैं ही ब्रह्म, हमारी स्त्री पर ब्रह्म है और हमारा लड़का परम ब्रह्म से भी परम 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 ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म का बाप हूँ और किसी ब्रह्म का पिता हूँ, पति हूँ, क्या जरूरत हमको दूसरे को भजन करने की? ब्रह्म में अब ब्रह्म में, बेटा में अब बाप में, बेटा में अब बेटा में लग गया, एक ब्रह्म से ब्रह्म में लड़ाई ब्रह्म में लड़ाई होती है, मामला मुकदमा होता है, पर ये आपके आने से होता है। अच्छा, आपको ब्रह्म है, आपको ब्रह्म है, तो आप ये उपदेश किसको दे रहे हैं? ब्रह्म को उपदेश दे रहे हैं ना, ब्रह्म को जीव को दे रहे हैं? शंकराचार्य से पूछा गया, क्या आप किसको उपदेश दे रहे हैं? ब्रह्म को उपदेश देते हैं, आप ब्रह्म है, आप तो मैं ही ब्रह्म, तो फिर आपकी दृष्टि में तो सभी ब्रह्म होना चाहिए, आपकी दृष्टि में ही आप ज्ञान जीव कैसे आया उसकी को उपदेश दे रहे हैं, इसलिए साफ कर रहे हैं। आप भी झूठे हैं, आपके गुरु भी झूठे हैं, आपके चेले भी झूठे हैं, मैं इसकी बात किसी की बात नहीं। इस तरह से शंकराचार्य जी के मत का जीव गोस्वामी ने बड़े सुंदर उसे खंडन किया। आप कहते हैं कि देखो, इस स्कंद पुराण में, किसने पुराण में, बड़ा पुराण में, एकादश स्कंद में श्रीमद् भागवत ने ऐसा लिखा है, एकादश एकादश स्कंद अभी अनारंभम समो जानती परमात्म विनंदना पराधीनश्च स्वस्थश्च स्वल्प ज्ञान सुखे ही अल्प शक्ति सदोष जीवात्मा ने दृशता तयोरक्यम किम तैर्न दुष्कृतम कृतम अंतर्जानी ऐक्यवाचीनि वचनानि जानतु तानि दृष्ट्वा भ्रमंती दुरात्मानो अल्पचेतस अतो महाअंधे महाअंध समस्त नरके ज्ञान अपेदत। ये श्रीमद् भागवत में ये बतला है, इसका अर्थ बतला है। भाई, जो लोग परमात्मा की निंदा करते हैं, निंदा माने आप मैया से कहें, पुत्र कहता है मैया से, मैं ही और पिता में हम में कोई भेद नहीं है, तुम पिताजी में और हम में भेद मत करना, क्या होगा? ये अपराधी है कि नहीं? उसका सिर काट लेना उचित है कि नहीं है? उसका सिर काट लेना, यदि तू कहेगा नहीं पिता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो कहते हैं कि लक्ष्मी जी हैं, राधा जी हैं, इनसे यदि कहे, उमा से कहे, शिवोहम, ये महापापी, हम ब्रह्मात्म में ब्रह्म हूं, ये महापापी है, मैं कृष्ण बन गया, कृष्ण नहीं करके कृष्ण हो गया, ये महापापी है। तो कहते हैं कि जो परमेश्वर की निंदा ऐसा करते हैं और कहते हैं कि उनका रूप नहीं है, यदि हमको कोई कहे इनका कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो ये गलत बात है, ये भी अपराधी है। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो अंधकार नरक में प्रवेश करते हैं, जीवात्मा है वो पराधीन, हम लोग पराधीन, अपने इच्छा से कोई भी नहीं कुछ कर सकते, उसका फल भोगना हमारे लिए अनिवार्य है, इसलिए हम पराधीन है, बद्ध है और अज्ञान मूलक है, हमें अज्ञानता भी है और थोड़ी सी शक्ति, अल्प शक्ति है हमारे अंदर में और दोष युक्त हम है। और परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा सब में परम मुक्त है, मुक्तों के भी मुक्त है और समग्र शक्ति संपन्न है, ऐश्वर्य संपन्न, समग्र ऐश्वर्य, समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य, समस्त स्त्री इत्यादि सब में उन्हें ऐश्वर्य समग्र वो तो सबके वो प्रभु है और वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानमय है, ज्ञाता है, ज्ञात्री शक्ति आनंद है, आनंदमय है, दोनों है, है, शक्ति है, शक्तिमान भी है, वो सब कुछ वो है। और तुम, और इसलिए यदि कोई ऐसा पाता है कि जीव ही ब्रह्म है, तो ऐसा पापी जघन्य कोई नहीं है, उनके साथ में कोई संपर्क रखने की जरूरत नहीं है। ओ, कैसा वो लोग पाप करते हैं जो ऐसा करते हैं। ऐक्य बाकी जो परमात्मा का जीवात्मा का ऐक्य कहते हैं, ये दोनों एक ही है, तो ऐसा देख करके जो मूर्ख लोग हैं वही लोग उनका आदर करते हैं, बुद्धिमान इसका कभी भी आदर नहीं करते। मोहब्बत यदि ऐसा कोई कहे तो वो असुर होकर के असुर जन्म लेता है, यदि मोहब्बत ऐसा कोई तो असुर होकर के जन्मेगा। और अतः जीवात्मा परमात्मा की अभेद बुद्धि यदि कोई करता है तो महाअंध तक नरक में जाता है, इसलिए दोनों में एकता नहीं करनी चाहिए। अब ये श्रीमद् भागवत का विचार सुन करके और सब इनके जो साथ जो और जो निगम आगम थे, अब उन लोगों को कोई युक्ति नहीं, वो लोग चुपचाप एकदम बैठ गए, कोई सभा से निकल करके चले गए। और ये जो बैठे थे ब्रह्मा के पद पर गोकुमार जी, इनको बड़ा उल्लास हुआ, इन लोगों को बहुत आदर जत्न करके प्रणाम करके कहे, और कुछ आगे मुक्ति के बाद में क्या चीज होता है नहीं इसको जानना चाहता हूँ, कृपा बताइए। वो लोग तो चले गए, या उनमें जिनका आत्म संशोधन होगा वो तो रह गए, और बाकी श्रीमद् भागवत के विचारों को सुनने लगे, श्रीमद् भागवत यूज करके और प्रवचन करने लगे। अब इसके संबंध में हम लोग अगले दिन यानी आज ही करेंगे। साधुओं का और असुरों का अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत साध्य और साधन होता है। रावण अपने घर में देवी की पूजा करता था और मेघनाथ इत्यादि बकरे भैंसे ये सब बलि दी जाते हैं, रक्त की धारा से मन वो और उधर विभीषण हरि नाम करते थे, दोनों एक हो जाएंगे, वो भगवान का हरण करते 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 भगवान और ये असुर लोग हरण करते, ये दोनों का विपरीत दिशा है एक नहीं। इसलिए साधुओं का साधन और साध्य और असुरों का साध्य और साधन अलग अलग है, इसलिए असुर लोग मुक्ति चाहते हैं और भक्त लोग भगवान की सेवा और प्रेम चाहते हैं, प्रेम सेवा चाहते हैं। इसलिए भारत में कहा गया है भगवान यदि किसी को मुक्ति भी भक्त को देना चाहते हैं तो भक्त को क्या कहते हैं, नहीं हमें जरूरत नहीं है, यमान अपराजन के बिना सेवन बिना जना। और संसार के अधिकांश लोग जो साधु संघ में नहीं आते हैं वो सब मुक्ति चाहते हैं, 1% लोग हैं जो भगवान की प्रेम सेवा चाहते हैं, और 99% लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। वो भक्ति और मुक्ति में कोई अंतर ही नहीं समझते, उनको कोई उपदेश ही नहीं मिला है, गुरु ही नहीं जानते हैं तो शिष्य क्या बतलाया है और साधारण लोग क्या समझे। इसलिए मुक्ति में और भक्ति में अंतर उनके इस दिमाग में आता ही नहीं। मुक्ति चाहने वाले भी उसी श्रेणी में जिस श्रेणी में भगवान का भजन करके उनके ब्रज में रहने वाले राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, दोनों को एक तराजू में लोग तौल देते हैं। इसका मतलब जो उनको भक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है जो भक्ति की चोपा है। कहते हैं जो लोग विषय सुख चाहते हैं स्वर्ग में और अपवर्ग इत्यादि आता तो मुक्ति चाहते हैं, ये सब असुरों का साधारण मनुष्य धन संपत्ति इत्यादि और अंत में मोक्ष एक कर। और साधु लोगों का साधुत्व क्या है, कृष्ण की भक्ति से ही साधुत्व साधित होता है। जो लोग कृष्ण की भक्ति नहीं करते कृष्ण राम भी आ जाएंगे विष्णु भी आ जाएंगे, तो जो कृष्ण की राधा जी का भजन नहीं करते हैं वो अर्थात विष्णु तत्व की उपासना नहीं करते हैं, गुरु मंत्र ऐसा नहीं मिला है और दूसरे देवता देवी का मिला है, तो उसको साधु की श्रेणी में नहीं रखा जाए। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण भक्त ही वो साधु, कृष्ण का जो भजन करने वाले हैं वही साधु हैं, और जो भजन नहीं करते हैं वो साधु नहीं। इसलिए तया साक्षम सतलम परम फलम। इसलिए जिस भक्ति में राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होती है वही साधुत्व का लक्षण है। जो भक्त कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, बस बैठ करके हरे कृष्ण करता है, राधे राधे कर रहा है, और कुछ में वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अच्छा है। और बड़े त्यागी हैं, बड़े वैरागी हैं, लाखों यज्ञ कर चुके हैं इधर उधर, किंतु नाम की झोली या नाम नहीं है, गले में तुलसी माला नहीं है, राधा कृष्ण का भजन नहीं करते, तो समझो कि ये साधु नहीं है। ये तो शास्त्र कहते हैं, इसलिए हम लोगों को भी ठीक इसी रूप में चलने की चेष्टा करनी चाहिए। उसी को साधु कहेंगे जो राधा कृष्ण का भजन कर, और उस राधा कृष्ण के चरणों में जिसकी जितनी अधिक कृति है उतना ही बड़ा साधु, अन्यथा वो साधु नहीं है। केवल प्यार से, वैराग्य से, वेशभूषा से, जटा से, या खाली ऐसे शरीर में रहने से, या कुछ भी नहीं खाते हैं, दुधाहारी है, पायाहारी है, या फलाहारी है, इससे तो बकरी भी तो घासी करती है, और बंदर तो फल खाते हैं, कपड़े भी नहीं है, तो ये बड़े भारी बैरागी बन गए। इसलिए बैराग्य चिन्ह साधुत्व नहीं है, साधुत्व का चिन्ह बैराग्य नहीं है। उनका जैसे किसी भी देश में रहे, चाहे वो गृहस्थ देश में रहे, त्यागी देश में रहे, जिस देश में रहे, कोई भी आपत्ति नहीं, भगवान का भजन नाम देना चाहिए, यदि नाम करते हैं भगवान की कथाओं में रहते हैं, राधा कृष्ण का एकांतिक रूप में भजन करते हैं, तो जिन लोगों को राधा कृष्ण में विश्वास नहीं है पूर्ण रूप से, यही स्वयं भगवान है, तो राधा कृष्ण की मूर्ति के साथ साथ में जितने अंड बंड खंड जितने भी ठाकुर जी हैं, पूरी अलमारी भर जाएगी उनके घर में, गणेश जी से लेकर के दुर्गा काली जितना भी है सब कुछ उनके घर में, जितना 33 करोड़ देवता देवी कहेंगे किसका आदर करे, किसका नादर करे, किसका क्या संसद में रहते हैं, और राधा कृष्ण का भजन करने वाले या उसी में रानी चाहिए, वो एकदम मिल सकता है। बस एक साधे सब सधे, आप सब साधे, इसलिए वैसा ना करके एकांतिक रूप में राधा कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। नारद जी एक बार ऋषि महाराज के राजसी यज्ञ में पढ़ा, भगवान ने चक्र से शिशुपाल का मध कर दिया और उसकी आत्मा भगवान के चरणों में प्रवेश कर, तो इतना दुष्ट व्यक्ति और ये भगवान में कैसे लीन हो गया, जो ऋषि महाराज ने इसके मुख में उस व्याधि क्यों नहीं हो गई, भगवान की निंदा करता है, तो नारद जी उनको समझा रहे, ओहो ये दुष्ट लोग भी बैरान बंधे न मत समया न तो का भक्ति योगे न किसी योगे काम या क्रोध से, देश से, मित्रता से या भक्ति से, किसी भी प्रकार से भगवान में मन जिस कृष्ण में मन लगाने से वो सभी मिल जाते हैं, जैसे भी मिले तो द्वेष करने से भी, कामना से भी,
उनसे प्रति शत्रुता का भाई वैरानुबंध है ना, बैर से भी साधन चाहिए भगवान उसके लिए अपना परम पद दे देते हैं। तो जो प्रेम पूर्वक यदि भक्ति करेगा तो उसको क्या नहीं देते, किंतु क्या देते हैं बैर से या शत्रुता से क्या देते हैं ये जरा स्पष्ट नहीं किया। गोल माल कुछ गोल मटोल रखते कंस को भी भगवान मिले, मुक्ति मिल गई उसे, किंतु गोपियों ने काम के द्वारा प्रेम के द्वारा जो उनका भजन किया गोपियों की स्थिति इसको मिल सकेगी ये नहीं। इसलिए ये कह रहे हैं अरे भाई जैसे तैसे शत्रु भाव से भी जिसका भजन करने से उतना उनको मारने आई और उसको शब्द की छात्र गति दे दी, कैसे बड़े दयालु हैं कि उनका भजन छोड़ सकते और दूसरे का भजन न करो। इसलिए उन्होंने ये पांच तरह से या छह तरह से भजन का मार्ग दिखाया, किंतु यथार्थ में प्रेम भक्ति को ही सबसे ऊंचा साथ में रखना है, इसके द्वारा ही भगवान का भजन करना चाहिए। तो भक्ति के जो रसिक है ऐसे तत्वविद जो है तत्व को जानने वाले महान पुरुष है वही लोग भक्ति का साधन करते हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे नहीं, पूर्व जन्म का संस्कार नहीं, साधुओं का संग